देखो भैया, भगवान की लीलाओं का और अवतारों का एक से एक वर्णन है। कृष्ण लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जब मथुरा छोड़कर के जाके द्वारका बसा ली तो ग्वाल बाल मथुरा वृंदावन के तो वृंदावन में, लेकिन मथुरा में भी उनके कोई पैसे वाले दोस्त और ये सब नहीं थे। जुरासिंध ने 16 दफे भगवान जुरासिंध को हराया 17वीं बार रण छोड़ करके, और भगवान जाके द्वारका बसे। वहां जाने के बाद में बाबू जी का विवाह हो गया। किसके साथ? रेवती जी के साथ। अब इधर कृष्ण भगवान और बलदाव दो ही तो बड़े थे लड़कों में सारे। तो जब कृष्ण का कोई भी रिश्ता भगवान ने अभी तक नहीं किया, पहले शादी, सबसे पहली शादी रुक्मणी जी से की थी। तो रुक्मणी जी का जब स्वयंवर नहीं हुआ, शादी मतलब पक्की हो गई उसकी, तो किसके साथ हुई? शिषपाल के साथ। रुक्मी और शिषपाल दोस्त थे, और शिषपाल जुरासिंध का भतीजा था। जुरासिंध से कृष्ण का पक्का कट्टर दुश्मन आई थी, क्यों? वो कंस का ससुर था, तो उनकी बेटियों कंस को मारने के बाद में, और जुरासिंध ने शिषपाल से, भगवान कृष्ण ने काफी बैर कर लिया था, ये तो सब भागवत की कथा है, सब जानते ही है। तो वहां सब चारों तरफ राजा भीष्मक की पुत्री थी, उसके 5 पुत्र थे भीष्मक राजा के। 4-5 पुत्रों का रुक्मैया, रुक्मकंवर, रुक्मानंद ऐसे करके नाम थे। छठी रुक्मणी बाई थी। तो उसने, रुक्मैये ने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त शिषपाल से पक्की कर ली। जब रुक्मणी को ये पता चला तो वो बोली, मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ उसको, मैंने अपना वर चुन रखा है। तो घर में उसको एकदम दबाव डाल के काफी उसको समझाते हैं, करते हैं, लेकिन रुक्मणी जी शिषपाल के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। उधर द्वारका में कृष्ण से सब अपने दोस्त सब ये कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सखा, देखो मतलब भीष्म राजा की पुत्री का विवाह होने जा रहा शिषपाल के साथ, आपने यहाँ से भी कोई जाएगा क्या? हमने कभी भी अच्छे घरों की राजाओं की शादी नहीं देखी, कभी अच्छा भोजन नहीं किया शादी ब्याह का, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो अब आप तो मतलब सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण बोले, हाँ तुम ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन राजा भीष्म ने हमको पत्रिका ही, हम कैसे जाएंगे? तो दाऊ भैया भी बोले, ठीक बात रहे, उसने निमंत्रण ही नहीं दिया शादी करने, टीका तो अलग रहा, राजाओं के शामिल में भी नहीं बुलाया। तो कृष्ण भगवान को भी थोड़ा चिंता सी लगी कि रुक्मणी तो मेरी है और शिषपाल के साथ उसके ब्याह होने के लिए जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोच रहे हैं। तो उधर शिषपाल जब बारात लेके जाता तो शिषपाल की भाभी उसको समझाती है कि हे शिषपाल, देखो मैंने ब्राह्मणों से सुना है कि रुक्मणी तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहती है, वो कृष्ण के साथ शादी करनी चाहती है, तुम मत वहां जाओ, तुम्हारे जाने से हानि होगी तुम्हारी। कि मत करे शिषपाल निकासी, वहां आएंगे बीरज के बासी, क्यों डाले गल में फांसी, मत कर शिषपाल निकासी। उसको समझा रहे देवर को कि मेरे देवर तू निकासी मत कर, वहां जाने से काफी हानि होगी। बोले, तेरे को मतलब नहीं है, मेरी शादी हो रही है इतने बड़े घर में, और इतनी अच्छी लड़की है, रुक्मणी गुणों की खान है, मैंने सबसे सुन रखा है, तो इसलिए तुझे सहन नहीं होता है, मैं अवश्य जाऊंगा। तेरा जो नेग होता है, काजल वाजल डाला जाता है शादी में, भाभी डालती है, तो वो करना है तो कर दे, नहीं मैं अपने आप जो भी कुछ करना है करके चला जाऊंगा। तो वो बोली, मैं तो तेरे काजल डालने की नहीं। हलदर उठे हाँक के, तेरी हल से रेख सुवार। हलदर जी हैं कृष्ण के भैया, दाऊ भैया, वो हल रखते हैं, तो हल मूसल से तेरी आंख की रेख सुवारेंगे, वो ठीक से काजल वो डालेंगे, मैं नहीं डालने की तेरे। तो उधर शिषपाल बरात लेकर के चला गया, पहुंच गया कुंदनपुर, और रुक्मणी को माता भाभी ये सब मतलब है? तो सारे जने वहाँ शिषपाल को बरात दूल्हा के रूप में खूब लाड़चाव हो रहे हैं, रुक्मैया कर रहा है जा करके, और ठहरा दिया। अब रुक्मणी को माता और भाभी ये बोल रही है कि बेटी देखो बारात आ गई है, अब श्रृंगार करो। तो माता कह रही है, हे कुंवरी बिलखी ना पिरो, बिलखी ना पिरो, दुख दूर करो, मन मौज करो री। भावज हाथ लिए हल्दी पट, बैठ पटा आन लटा मसरोरी। भावज श्रृंगार की थाली, उपटन की थाली लिए खड़ी है, तुम चौकी पर बैठ के श्रृंगार करो। देखो ब्यावन आए चंदेरी धरा पत, दुख दूर करो, मन मौज करोरी। तो रुक्मणी कहती है, हे माता मुख बंद करो, मुख बंद करो, मुँह पे भार पड़े ये बचन न कहोरी। हे माता, तुम शिशुपाल का नाम लेती हो तो मेरे तन में आगी सी लगती है, मेरे पे भार पड़ता है, उसका नाम मत लो। मेरो मतो श्री नंद के नंदन से, और ब्रजराज मिले वो उपाय करोरी। भगवान कृष्ण मिले ऐसा उपाय करो। तो रुक्मये तक खबर पहुंचते, बोले राजकुमारी को समझाओ, उस ग्वालिये के साथ इतने बड़े कुल की लाज देनी है मेरे को, इसको समझाओ। तो जब देख लिया रुक्मणी ने कि भाई तो मानेगा नहीं, तो मैं क्या करूं, तो एक ब्राह्मण को पटाया उसने। ब्राह्मण देव से बातचीत होने का मतलब राजभवन में जाते थे, तो बोली कि हे बाबा देखो, तुम मेरी पत्रिका, एक मैं छोटी सी पत्रिका लिख देती हूँ, समय नहीं है ज्यादा बताने की लिखने की, तो तुम द्वारका पहुंचा सकते हो क्या, मैं इतना द्रव्य दूंगी तुमको, पूछो मत। तो बोले बेटी जल्दी कर, अगर रुक्मये को पता चल जाएगा। तो बोली रुक्मये को पता चल जाएगा ठीक है, वो तो चलेगा, तो राजा अगर रूसेगा तो नगरी तो रखेगा, मैं इतना धन दूंगी, तू दूसरे देश में जाकर के अपना रह जाना, दूसरे गांव में, और ये सीमा छोड़ देना। तो पंडित भी लालच में आ गए, ब्राह्मण देवता को लिख करके पत्रिका दे रही है कि भगवान से क्या कह रही है, गरुड़ चढ़े आओ मारा श्याम धनी, अब रुक्मण में भीड़ घनी, खींच गई मंडप की तनी, प्रभु जी खींच गई मंडप की तनी, गरुड़ चढ़े आओ मारा श्याम धनी। भाई रुक मैयो माँ से बैर करो है, छल के बुलायो शिशुपाल धनी, गरुड़ चढ़े आओ मेरे श्याम धनी। हे प्रभु देर मत करो, गरुड़ पे चढ़ के आओ, और नहीं तो खाए के मरूंगी प्रभु हीरे की कनी। सुना जाता है कि हीरे की कनी खाने से भी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ विश्व इसका मंगाने का भी काम नहीं है, हीरे मेरे शरीर पे लदे हुए है, कोई भी हीरा निकाल के मैं मुंह में डाल लूंगी और मर जाऊंगी, हे प्रभु प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस दुष्ट के साथ मैं ब्याही नहीं जाऊंगी। तो आप तो बोल रहे तरह तरह से गा रही, देखो प्रभु मारो तो कछु बिगड़े नहीं, लाजे बानो तिहारो मेरे रामा, लाजे बानो तिहारो जी। हे प्रभु मैं तो स्त्री की जाती हूँ और भक्ति भाव में हो रही हूँ, लेकिन आपका बहुत बड़ा बाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी अपकीर्ति होगी देव समाज में, तो मेरे को ब्याहने के लिए आप जल्दी आइए। तो क्या लिख रही है, रुक्मण विद्या ना पढ़ी ना हृदय में ज्ञान, रुक्मण लिख दी पत्रिका थे बाँचो दीना नाथ, सदा गुण थारा गाऊं पापी तो बाँचत बेग पधारियो, महाराज कृष्ण जी कारज रुक्मण का बेग पधारियो। ब्राह्मण को पत्रिका दे दी और काफी धन दे दिया, और दे करके बोली कि जाओ दादा चिंता मत करो, वो भगवान श्री कृष्ण के आपने गुण सुन रखे हैं। बोले रुक्मणी भली भांति सुन रखा है, वो बड़े चमत्कारी और बड़े दीनानाथ हैं, अवश्य आएंगे बेटी तू चिंता मत कर, और मैं जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी, जितना चला जाएगा इतना जाऊंगा। तो ब्राह्मण जाया, कितनी दूर चल सकता था वो, जाकर के थक के किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो दाऊ जी ने कहा कि देखो कृष्ण, द्वारका से पत्रिका रुक्मणी की लेकर के एक ब्राह्मण आ रहा है, लेकिन वो तो 10 रोज में भी नहीं पहुंच पाएगा, कुंदनपुर से चला है द्वारका बहुत दूर है, तो कोई उपाय करो। भगवान ने अपनी योग माया से उसको द्वारका के अंदर ले जाकर के छोड़ दिया। जाके द्वारकाधीश का घर पहुंचा, पहुंच करके पूछा और पूछ करके द्वार के ऊपर गया, जाकर के भगवान कृष्ण को पत्रिका दी, रुक्मणी की प्रेम पत्रिका, पाती बाचे छल छकनिया, रुक्मणी बचन की रचना, कि मैंने रचना से जो कुछ लिखा है और पाती बाचे छल छकनिया, हे प्रभु जो कुछ मुख से टेरती प्रभु सोई लीनो मान, वो ही आप आदर करके मान लेना, प्राण नाथ प्रतिज्ञा रखो, अर्ज सुनो दे कान, आज मोहिताती बीती, आज मेरे ऊपर ताप से शरीर जल रहा है मेरा, बाहरी संकट है, जल्दी आइए। तो वो ले जा करके बलदाऊ जी को दिखाए, बोलो जल्दी चलने की तैयारी करो। माताओं को बोले कि ये पंडित आया है, कुंदनपुर से पत्रिका लेकर के, बिगर पत्रिका तो नहीं जा सकते थे ना, क्यों वैसे हरण करके लाए तो हरण करके ही थे, लेकिन किसी का प्रमाण तो था राजकुमारी का कि पत्रिका भेजी थी। तो माताओं को बोलते हैं कि पंडित आया है, इसको भोजन कराओ। तो माताएं गाती, सारे भजन मारवाड़ी में है, तो माताएं गाती है, जोशी जी हमारे घर आए जी पांडे जी, जोशी जी हमारे घर आए जी पांडे जी, क्या कहा है राजा भीष्म जी की नारी, जिन शिशुपाल बुलाए जी जोशी जी, और क्या कहा है थारी भाई रुक्मणी, जिन यादवों का मान बढ़ाया जी जोशी जी, हमारे यादवों का कोई सम्मान नहीं करता था रुक्मणी ने, और अपने मतलब पत्रिका लिख करके भेजिए, हमारा काफी आदर किया है, तो मतलब वो रुक्मणी क्या कहा है। तो सखियां मंगल गा रही हैं, मतलब घर की जोशना, तो बोला अब जोशी जी भी अपनी तरफ से सुना रहे। तो जोशी जी बोले, पर सुन समुदन चतुर सुजान, आयारी में तो तोरे अंगना, सुन ब्याहिन चतुर सुजान, आयारी में तो तोरे अंगना, अरे भोजन छाजन खूब करायो, भोजन छाजन खूब करायो, अब सुनो करो कृपा जजमान, खुशी हो के देव दक्षिणा। ब्राह्मण ने देखा इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा धन दौलत, और यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं है, भोजन खातिरदारी खूब हो रही है, अब दक्षिणा की समदन के कान में डाल दूं थोड़ी सी। तो भगवान कृष्ण सुन रहे थे उधर, तो बोलते हैं कि पंडित जी महाराज आप जाइए, जाकर के ये रुक्मणी को संदेश दे देना कि मैं चल पड़ा हूँ, मैं आपके साथ साथ ही आपसे पहले ही पहुँच जाऊंगा, ये समझ लो, लेकिन वहाँ की रीति रिवाजियाँ क्या है ये बतलाइए मुझे, कि राजकुमारी से मिलना किस द्वार पर कहाँ हो सकता है। तो बोले कि देखो राजकुमारी शादी से पहले और अंबिका जी का पूजन करने जाती है, वहाँ राज महल की ये जो बातें हैं ये राजा का नेम है, मतलब तो हमारे कुल की रीति राजा की ये है, राजकुमारी अंबिका जी की पूजा करने जाएगी। तो बोलो ठीक है। तो बोलो ब्राह्मण को बोले कि आप धन की चिंता मत करो ब्राह्मण, तो आप घर पहुंचोगे जब तक धन भी पहुंच जाएगा, मेरे मतलब जो कर्मचारी हैं समझ लो वो आपके घर पे आपका एड्रेस जानते हैं, पहुंचा देंगे। ब्राह्मण देवता को एक पल में पहुंचा दिया वहाँ, और जाकर के ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से इशारे में बतला दिया कि वो आएंगे, आ गए हैं, बोले कि वो आसपास में कहीं पे भी ठहरे हुए हैं, अब बेटी जल्दी से पर अंबिका पूजन करने जाओ, मैंने कृष्ण से ये कहा अंबिका की पूजा करने देवी जी के मंदिर में जाएगी। तो रुक्मणी जी को इनकार तो किया रुक्मये ने, लेकिन उसकी माता ने और राजा ने ये सब कुछ कहा कि देखो मतलब कुल की रिवाज तो निभानी पड़ेगी, तो काफी पुलिस वुलिस दे करके, लेडीज पुलिस और सब दे करके रुक्मणी को रथ में बैठा करके कि कहीं कोई रास्ते में गड़बड़ नहीं हो जाए, और अंबिका जी के मंदिर पे जा करके पूजा के लिए, और थाल वहाँ अम्बा के पास में रखा। तो रुक्मणी जी गा रही है, भवानी माने नंद को नंदन परना, माता माने नंद को नंदन परना, हे माता भगवान कृष्ण से मेरा गठबंधन करवा दो, नंद के नंदन से मेरा नाता जुड़वा दो। माता आप सब कुछ करने वाली है, तो वहाँ आकर के गौरी जी का आशीर्वाद मिला और रुक्मणी जी के गलों में माला माता के कंठ से आके गिरी, खुश हो गई। तो आकर के जहाँ बाहर चबूतरा बोलते हैं ना, मतलब वहाँ पे खड़ी हो गई, तो सारी सेना देख करके, चारों तरफ सेनाओं का पहरा था और रुक्मणी जी के गहने कपड़े और उसकी सुंदरता को देख करके सब पागल हो गए। भगवान की योग माया से सारे मूर्छित से हो गए, खड़े हैं पैरा वैरा सब भूल गए, और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। कि अंबिका के भवन के बीच मुकुट की छाया पड़ी, देवी अम्मा के भवन के बीच मुकुट की छाया पड़ी, मुकुट की छाया पड़ी, और लंबा हाथ पसार के प्रभु ने हरण कर लिया। तो अब जब होश आया, देखा कि रथ तो हका करके ले जा रहे हैं, तो हल्ला मचा कि दौड़ो दौड़ो गुआ लोलियां जाए रे, भागो भागो गुआ लोलियां जाए रे, अरे सन्मुख दौड़ो जाए रे, पकड़ो पकड़ो गुआ लोलियां जाए रे। सबने हल्ला मचाया, रुक्मी के जितने भी थे कि पकड़ो ग्वालिया लेकर के हरण करके भग गया। तो शिषपाल बोला कि अब तो भारी, अब क्या होगा। दोस्त से बोलता रुक्म कुमार से कि अब तुमने वचन दिया था रुक्मणी का तो हरण हो गया, मुझे पहले ही खतरा था वो ग्वालिया पहुंच जाएगा तो कुछ अपद्रे मचाएगा। बोले भाई देखो, हमने उसको निमंत्रण भी नहीं दिया और वो आ गया, अब वो हरण भी हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो शिषपाल बोल गुस्से होने लगा उसके ऊपर और दुखी होने लगा। तो रुक्मैया बोला मैं पीछा करता हूँ, जाता हूँ, मैं ऐसे मेरी बहन को थोड़ी ले जाने दूंगा मैं उस ग्वालिये को। तो शिषपाल और जुरासिंध भाग गए, शिषपाल जुरासिंध मोदा गेर नगारा, और लाडी गई लाज भी ले गिर कर गई मुंडा काला, कि मतलब मुंह के ऊपर कालस पोत के लाडी भी गई लाज भी गई और मुंह भी काले हो गए, सब भग गए। वहां युद्ध हो रहा, शिषपाल की मतलब हंसी हो रही थी, वो तो अपने भग गए। और अब भगवान कृष्ण जाकर के रुक्मी जाकर के भगवान कृष्ण का पीछा करते हैं, तो वहां जाकर के काफी युद्ध हुआ, शास्त्र में भी है और मतलब सब चीज में लिखा हुआ, काफी युद्ध हुआ। तो रुक्मणी जी से ले जाकर के एक रथ के पीछे ठहरा दिया, तो युद्ध हुआ, तो रुक्मणी तो जानती थी युद्ध तो होगा। फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि रुक्मी को रथ के पहिये के और बीच में जो जगह रहती है दोनों पहियों के वहां बांध दिया, तो एक पेड़ के नीचे जाके ठहर गए। तो ठहर गए तो वहां नारद जी पहुंचे, बोले हरण कर लाए प्रभु माता लक्ष्मी का, ये देवी रुक्मणी तो लक्ष्मी है महाराज, ये उस शिषपाल के साथ कैसे ब्याही जाती थी। तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ लेकिन रुक्मणी जी को भी भड़का दिया, बोले देखो अभी मौका है तुम्हारे रथ के पीछे, देखो तीन लीके हैं, दो तो रथ के पहिये की, एक तुम्हारे भाई को बांध रखा है उसके सिर की, तो तुम साइड में खड़ी हो जाओ, बोले मेरे भाई को खोलो, जब मैं जाऊंगी ये मार देंगे नहीं तो। तो रुक्मणी उतर करके और वहां खड़ी हो गई। तो नारद जी पूछ रहे हैं हरण कर लाए ये कर लाए, बोलो महाराज हरण तो कर लाए लेकिन देवी रुक्मणी तो आपके साथ जाने से इनकार कर रही है ऐसा लगता है। बोले क्यों, बोलो वो देखिए वो तो रूठी हुई खड़ी है। तो रुक्मणी जी से पूछा, तो रुक्मणी जी बोली महाराज मेरे भाई की ये दशा मत करिए, आपके रिश्ता है इससे, कि मत मारो हल धर जी के वीर, भाई को लागे माने तीर जी, मत मारो हल धर जी के वीर, थारी आखिर जात अहीर जी, मत मारो हल धर जी के वीर। हे प्रभु आप बचपन में अहीरों के साथ खेले हैं तो आपकी आदत तो है ही दया धर्म के, आप इसको अभी खत्म कर देंगे तो मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। मतलब सब मतलब रुक्म कंवर को थे मत मारो, थारो लागे साड़ो मेरे रामा, थारो लागे साड़ो। जरा रिश्ते का तो विचार करिए, रुक्म कंवर ने जो प्रभु मारो, रचे विषम घर चाड़ो मेरे राम, भारी उपद्रव मच जाएगी मेरे पिता के घर में, तो आप इसको छोड़ दीजिए। मारो मान कमर मत मारो, मारो मान कमर मत मारो, दोनों बात उबारो मेरे रामा, दोनों बात उबारो जी। हे प्रभु, मैं भाभियों में और पीहर में जाके क्या मुंह दिख रहाऊंगी, आप मेरा पीहर ही छुटवा देंगे। ये रुक्मये को मत मारिए, आप छोड़ दीजिए इसको कि ये आपका रिश्तेदार है, कह करके और भी काफी उसने भजन गाए, तो मतलब बतलाई मतलब गा करके और के समझा करके, तो बोले कि रुक्मणी जब तो तुमने पत्रिका लिखी भाई के विरोध में कि ये ऐसे कर रहा हो और अब इसका प्रेम आ गया तुम्हारे ऊपर। बोले महाराज रिश्ता है, आपने मेरा हरण किया। बोले देखो रुक्मैया होश में आया, आकर के बोला कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, पहले युद्ध हुआ जब भी बोला और बंधा हुआ जब भी बोल रहा छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी बहन का हरण किया, हमने तेरे को बुलाया ही नहीं था, फिर भी ग्वाला ही बोलता है वो, हे ग्वाले तेरे को हमने नहीं बुलाया था। जो बोले पत्रिका तेरी बहन ने बुलाया था, पत्रिका दिखाई, बोले देखो रुक्मणी ने बुलाया था और कन्या का ब्याह आज जो मतलब ये होता है स्वयंवर उसमें अपने आप चुनती है और कन्या की इच्छा से, और मैंने इसका हरण किया है, मैं ऐसे नहीं है कि वैसे उठा करके लाया हूँ कोई चोरी करके, काफी बाजी हुई। तो बोले कि अच्छा तुम क्या चाहते हो। बोले देखो हमारे पांच भाइयों की एक बहन है, तो एक बहन है तो महाराज आदर के साथ इसको ब्याह के ले जाओ आप, अब आपके आपको इसने बुलाया है और आपने हरण भी कर लिया, तो अब तो आगे और कुछ बात रही भी नहीं है, तो आप इसको ब्याहिए। लेकिन मैं कुंदनपुर से चला जब ये विचार करके और यहाँ वचन दे करके जनता के सामने और शिषपाल को और सभा समाज के लोगों के सामने आया कि क्या तो मैं कृष्ण का सिर उतार के लाऊंगा और या कुंदनपुर में नहीं घुसूंगा, तो बोला उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो बोले कि हे राजकुमार ऐसा है रुक्मी कि नगर नया बसा लो और वहाँ अपनी बहन का ब्याह अच्छी तरह से करने का विचार कर लो, जब तो मैं छोड़ू नहीं तो मैं द्वारका जा रहा हूँ। तो बोले कि देखिए आप ही बतलाइए, कहाँ तो सुनते हैं कि मतलब नगर बसाया ये सवाई माधोपुर, इसका बतलाते हैं कोई, तो उस नगर का नाम रखा भोजकट सवाई माधोपुर, मतलब भो माने दुख तो रुक्मणी के दूर हो गए, कट गए दानव और सवाई माधोपुर, जिस उनका जो नगर था कुंदनपुर उससे भी सवाया और भगवान माधव का बसाया हुआ, तो भोजकट सवाई माधोपुर सुना है पढ़ा भी है ऐसा मतलब वहाँ। तो रुक्मणी को ले जा करके वहाँ ब्याह करने की तैयारियां होने लगी। अब जब वो शिषपाल अपने नगर में गया तो वो नाई जाते थे पहले बधाई लेकर के कि बारात यहाँ तक पहुँच गई, तो उसकी भाभी खड़ी देख रही थी, तो रात में जा करके वो नाई गेट खटखटाया, तो अरे नाई नाई रे दूलिया नाई रे, तू बता सारी बारात को कहाँ छोड़ आई रे, सारी बराती कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरा देवर कहाँ है, और नाई तू सच्ची बतला क्या हुआ। बोले महाराज सारे मारे गए, दूल्हा जुरासिन तो पहले ही मारा गया, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा पुराने महल में और छिपा हुआ बैठा है। बोली जिंदा है, बोली हाँ है तो जिंदा। तो रुक्मणी वो उसकी शिषपाल की भाभी वहां जाती है जहाँ शिषपाल छिपा हुआ बैठा था, तो जाकर के उसे ताने देती है, ओ देवर थारी लाडी ने निरखण आई, कंवर थारी लाडी ने निरखण आई, सवा करोड़ रत्ना जड़ मुंदड़ो देऊंगी मुंह दिखलाई, दूल्हा थारी दुल्हन ने देखण आई, कुण से महल बठाई कंवर मन बेगा दो बतलाई, कंवर थारी लाडी न निरखण आई। मतलब उसको बतले कौन से महल में बटलाई है राजकुमारी को, दुल्हन को जल्दी दिखलाओ, सवा करोड़ रत्न को जड़ा हुआ मुंदड़ा अंगूठी लाई हूँ वो उसको मुंह दिखाई में दूंगी। तो मतलब शिषपाल नीचे गर्दन किए हुए गोडों में घुटना सिर को दबाए हुए बैठा घुटनों में, तो बोलती है, कहे शिशुपाल की भाभी कहाँ तेरी खो गई रे आबी, तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई। कहो शिशुपाल ओ देवर कहाँ सब खो दिया जेवर, इतना जेवर पहन के गए थे श्रृंगार बना के, वो सब जेवर कहाँ खो दिया, क्या हालत बना रखी है। कहाँ तेरे अर्थ और गाड़ी कहाँ वो रुकमणी लाडी, कहाँ तेरे चढ़ने की घोड़ी कहाँ तेरे पांव की जोड़ी, कहाँ सिर पाव रंग बीनो क्या उसे दान कर दीनो, क्या शादी की बधाई में वो बांट दिया। अरे कहाँ तेरे कान का हीरा कहाँ तेरा दंताधर वीरा, उसके पति का नाम था दंताधर, कोई दंत वक्र कहते हैं कोई दंताधर कहते हैं, वो कहाँ मेरा पति ये बतला। और कहाँ तेरे साज और बाजा कहाँ 99 राजा, इस साज बाज तेरे लेकर के गए थे वो 99 राजाओं को साथ में लेके गया था, बड़े बड़े दिखपालों को कि ये सब मेरे साथ थे, वो कहाँ है बतलाओ जल्दी। रुक मई शिशुपाल कुछ नहीं बोलता है, कहाँ दृक्पाल से हाथी कहाँ सब जान के साथी, कुछ नहीं बोलता है। कहो शिशुपाल वो देवर कहाँ सब खो दिए जेवर, इतने सब जेवर लेकर के गए थे बांटने के लिए राजकुमारी के लिए, वो सब कहाँ है, वो मतलब शादी कैसे की ये तो बतलाओ। किसो एक दाए जो दानी किसी थारी की निपहरानी, दहेज कैसा दिया परामनी कैसे कही ये बतलाइए। क्यों बड़े घर में शादी करने गए थे, वो लक्ष्मी विषम घर जाई किसी एक साज से ब्याही, वो लक्ष्मी मैंने पहले ही कहा था कि वो लक्ष्मी है, वो राजा विषम के घर में अवतार लिया है, वो कृष्ण की पत्नी है, लेकिन तू गया था तो ये बता वो तेरे को कैसी साज से उसको ब्याया, क्या हुआ तेरे साथ में, सब वो काफी ताने देती है। कुछ नहीं बोलता है तो आ गई, बोली हुआ क्या होएगा ओरे तुम इतना भूलिए भोरे, सुबह पहले मेरी बात मत भूल जाना, राजसी यज्ञ में जाओगे शीश उतरा के आओगे, जब पांडव राजसी यज्ञ करेंगे उसमें जाओगे और कृष्ण भगवान तेरा गला काटेंगे, याद रखना भूल मत जाना, ये बात भी मैं सत्य कह रही हूँ, वहां भी तू जाकर के बड़ी ढींगे हाकेगा, 100 गालियां दी थी उसने राजसी यज्ञ में, भगवान कृष्ण ने उसका गला काटा था। तो कह करके चलने लगी, फिर भी उसकी आत्मा में शांति नहीं थी, तो बोलती है कि ये जेवर वेवर सब ये सारा खत्म कर दिया साज बाज सब, लेकिन हाथ के तेरे मेहंदी पैरों के तेरे मेहंदी ये क्यों नहीं हटाई तने, तेरे मेहंदी तो लगाए ही रहा ओ शिशुपाला देवरिया, हाथों के मेहंदी पैरों के मेहंदी तुरा की लंगी टांग्या ही रहो, फेंट दुपट्टो बांध्या ही रहो, हरे शिशुपाला देवरिया मेहंदी तू लगाया ही रहो, गयो थो तू मोड़ बांध कर, गयो थो तू मोड़ बांध कर, पर अब रुक मन बिन कहिया तू रहो, हरे शिशुपाला देवरिया मेहंदी तो लगाया ही रहो। मतलब भगवान की लीला है, भगवान की 16108 रानियां बतलाते हैं, लेकिन पहली शादी रुक्मणी से हुई थी। जब वृंदावन में थे तो प्रेम राधिका से था, वो राधिका गोलोक की संगनी बतलाते हैं, लेकिन राधिका से बचपन में प्रेम हुआ, सगाई भी हुई बतलाते हैं, ब्रह्मा जी ने उनका मानसिक पाणी ग्रहण भी करवाया था जब गाय बछड़े चोरी हो गए थे जब, लेकिन शादी नहीं हुई, वो वृंदावन की वृंदावन में रही तप की भूमि में, और तप करती रही वो जीवन काल तक, ये सुनते हैं। मंदिर बने आज संसार में, भारत में सारे बने हुए हैं मंदिर, किसके बने हुए हैं, राधा कृष्ण के। तो राधिका पहली प्रेमिका थी, लेकिन शादी रुक्मणी की के साथ हुई थी, रुक्मणी जी का मंदिर सिर्फ वही सुना है, कृष्ण का और रुक्मणी का मंदिर द्वारका में तो बतलाते हैं, लेकिन और सब जगह राधा कृष्ण का मंदिर है, जैसे सीताराम का जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है। तो भैया शास्त्र की ओर आप क्या चीज पूछना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो मेरे को, जो भी मतलब है शास्त्र का, तो भगवान की कृपा से पूरा अनुभव। लेकिन अब मेरे से ज्यादा बोला चाला नहीं जाता, ज्यादा बता भी नहीं सकती हूँ, इतनी आवाज भी नहीं रही, थोड़ी बहुत आप बैठ जाते हो कोई और कहते हो करो, तो मैं कभी कभी बोल देती हूँ। और शास्त्र का जहाँ से आप पूछना चाहो वो मैं अवश्य बताऊंगी। जय बाबा जी।